परमानंद माधवम श्रीमन
लोगों ने अपने मन से घुसेड़ दी है। अथवा ये भी हो सकता है कि ये भगवान इस प्रकार कर ही नहीं सकते, और अगर की है तो ये बात मान्य नहीं है। अब भगवान ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, इसका तो उत्तर भगवान दे सकते हैं। हम लोग तो भगवान के चरित्र को लिखने वाले महानुभावों के शब्दों पर ही चल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। लेकिन सोचना यह है कि चोरी वस्तु क्या है। चोरी होती है जो चीज अपनी न हो उसकी। अपनी चीज को कोई चाहे जैसे बरते वो चोरी नहीं होती। दूसरी बात, चोरी होती है किसी की चीज को छिपाकर अनजान में ले करके कोई भाग जाए, ये चोरी होती है। पर यहां ध्यान दे के देखें, दोनों बात नहीं है। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की नहीं है? संसार का कोई पदार्थ, संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई भाव इस प्रकार का नहीं है जो भगवान की मालिकी में न हो। सब चीजें भगवान की, इसलिए अपनी चीज को भगवान चाहे जैसे, चाहे जब, चाहे जिस प्रकार से ले ले, वो चोरी नहीं होती अपनी चीज। चोरी तो हम लोग करते हैं दिन रात, जो बड़े साहब बने हुए रहते हैं। ये जो भगवान की वस्तुओं पर मालिकी करना, विराज किए हुए हम लोग सब, ये घर हमारा है, ये मकान हमारा, ये गहना हमारा, ये कपड़ा हमारा, ये वस्तु हमारी, ये यश हमारा, ये कीर्ति हमारी, ये शरीर हमारा, इस प्रकार भगवान की चीजों पर दिन दहाड़े चोरी नहीं करते, डाका डालते हैं, हमारी हमारी। भगवान हंसते हैं कि चोर बेईमान सब हमारी हमारी कह रहे हैं, इनकी तो रहेगी नहीं, छिन जाएगी सारी की सारी, और दंड मिलेगा वो अधिक नहीं। तो चोर तो हम हैं जो भगवान की चीज को हमारी कहते हैं। तो हम अपने को तो शाह माने, और भगवान अपनी चीज को आप ले लें, इसमें भगवान ने चोरी की ये कहें, ये कहना बेसमझिए। दूसरी बात, चोरी अनजान में होती है, चोरी छिपी चीज की होती है। यहां तो जरा ध्यान दीजिए भगवान की माखन चोरी पर, और उसी माखन चोरी पर सूरदास ने और बड़े बड़े महात्माओं ने कुछ पद कहे हैं। उसमें से दो पदों का अर्थ आज हमें करना है। एक दिन की बात है, यशोदा मैया माखन बिलो रही थी, और बड़े आनंद से अपने लाला की ओर देख रही थी। क्या हुआ कि उसी समय एक गोपी आ गई, और गोपी आकर के दूर से खड़ी देखने लगी श्री श्याम सुंदर के मुखारविंद को। तो वो गोपी खड़ी देख रही है, मैया दही बिलो रही है, श्याम सुंदर पास खड़े हैं, और खड़े खड़े बोले है कि मैया देख, तू मेवा पकवान की बात कहती है, बड़ा हो गया जरा मेवा खाया कर, मिठाई खाया कर, मुझे अच्छे लगते नहीं, मुझको तो बस केवल मक्खन अच्छा लगता है, और तू अगर नहीं देगी तो देख मैं मचल जाऊंगा। मैया ने कुछ कहा नहीं, वो अपना मथानी में लगी रही। मैया ने सोचा ऐसे ही कहता है, ये पीछे से गए, मैया के पीछे से मटकी तो आगे रखी है, मैया मस रही है, अब मैया मस्ते मस्ते मैया की जरा भगवान की माया, लाला की बाल लीला याद करके मैया मुग्ध हो गई, मैया की आंख मुद गई और अंदर ही वो अपना लाला के गुण का स्मरण करने लगी। इन्होंने देखा मैया ने तो आंख मीच ली, अब नींद आ गई, चलो अब मौका लगा। तो इन्होंने धीरे से हाथ डाल के मक्खन आ गया था, बिलो रही थी मधुरी, मक्खन आ गया था ऊपर, तो यूं ले करके मैया ने कि वो मटकी में हाथ डाला और मक्खन लिया मुंह में ले करके और पीछे खड़े हो गया। मैया ने आंख खोली, कहां गया रे, क्या किया, देखा मक्खन उखन लगा हुआ खेड़ा हुआ, इतने में भाग गए। बोले देख अब क्या करती हूं, तो एक गोपी वो जो खड़ी देख रही थी उसको बड़ा मजा आया। ब्रज युवती एक पाछो ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबू मेरे घर देखो माखन खात। ब्रज युवती एक पाछो ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबू मेरे घर देखो माखन खात। बैठे जाए मथनिया के ढिंग, मैं तब रहूं छपानी, सूर श्याम प्रभु अंतर जानी, ग्वालिन मन की जानी, सूर श्याम प्रभु अंतर जानी, ग्वालिन मन की जानी। ये सूत्रपात है माखनपुरी का। ग्वालिन ने मन में किया, कभी मेरा भाग्य जागे और कभी मैं इसी प्रकार अपने घर में भी मट्टी में हाथ डालकर श्याम सुंदर को चुरा कर माखन खाते देखूं, ये मटकी के पास आके बैठ जाऊं, मैं छिप जाऊं और पीछे से माखन निकाल ले और खाएं, इस प्रकार भोग लगाए। मन में आया भगवान ठहरे भक्तवान चाकल पत्थर, ये नैवेद्य लगाने की विधियां बहुत हैं भगवान को भोग लगाने की, पर ये ब्रज में एक नई विधि और निकलती है महाराज। प्रेम राज्य की जो विधियां होती हैं वो सब विचित्र होती हैं, विलक्षण होती हैं। भाई सामने चौकी रखो धोकर गंगा जल से, उसके ऊपर सोने का थाल रखो, बड़े पवित्र भाव से पकवान बनाया हुआ हो वो रखो, फिर वेद के मंत्रों से भगवान का आवाहन करो, नैवेद्य भगवान के भोग लगाओ, हैं नैवेद्य समर्पण भक्तिपूर्वक कहो, तब भगवान कहीं भोग लगावे न लगावे। यहां गोपी के मन में आया कि मेरे यहां भगवान भोग लगावे, पर भोग लगावे मेरी नई पद्धति से, मेरे मन की पद्धति से, मैं छिप जाऊं, रखूं मक्खन इन्हीं के लिए, भोग लगाने के लिए ही, भोग लगाने के लिए मटकी में बड़ा सुंदर मक्खन निकाल करके रखूं और मैं छिप जाऊं, और ये सब छुपके से आए, कभी सखाओं को भी ले आए, अच्छा है बंदर को उठा दो पहले नहीं, इनको गोपियों को लुटने लुटाने में कोई भी इनके मन में वो दुख नहीं है, तो चाहती हैं बस किसी प्रकार लुट जाए और लुट जाए उनके हाथों, बस दूसरे के हाथ न लुटे। तो इस प्रकार से गोपी के मन में आई, तो गोपी के मन में आई तो सूरदास प्रभु अंतर जानी ग्वालिन मन की जानी। अंतर जानी प्रभु ने ग्वालिनी के मन की बात जान ली, उसकी प्रार्थना सुन ली और कहा कह दिया मणि में तथास्तु, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार, इसी प्रकार भोग लगेगा। अब साथ अब जहां स्वीकार हो गई प्रार्थना माधुर क्या है, दूसरे दिन गए श्याम सिंह ग्वालिन के घर, देखो द्वार नहीं को इतउत चितो चले चलो भीतर। कोई अगर अपने घर में चोरी करवाना चाहे तो उसका इंतजाम कर रखता है पहले वो, तो ये तो चोरी करवाना चाहती। इन्होंने क्या किया कि बच्चे उठे जो बाहर खड़े होते उनको हटा दिया अलग, कि कहीं वो आवे और आ करके डर के निकल जाए तो ठीक नहीं, कोई दिखे नहीं, चोर मजन घुस जावे अंदर। और ये पहले दिन था ना तो छींके पर नहीं रखा, आज नीचे ही मटके में रख दिया कि आते ही उनके हाथ लग जाए। तो साहब अब हुआ क्या, वहां बड़ा सुंदर बंधन करते हैं कि श्याम सुंदर गोपी के घर में गए, पहुंचते देखा कि दरवाजे पर कोई है ही नहीं, सुना दरवाजा मिल गया, इतुत चितो चले चलो भीतर, इधर उधर देखा कोई नहीं तो मजे में घर में घुस गए। उसने देखा वो तो बाहर देख रही थी ना, विचित्र बात, अपने घर को लुटवाने के लिए चोर की बात देखे कोई, ये नई पद्धति। तो वो देख रही थी बात के बारे, देखा आ गया तो हरि आवत गोपी जब जान्यो आपन रही छताए, जब देखा कि आ गए तो देखा मुझे देख के भाग न जाए, आया देखकर चोर को घर में आया देखकर वो छिप गई। सुने सदन मदनिया मथनिया के भेजे बैठ रहे अरगा, जब देखा कि न कोई दरवाजे पर टूटने लोटने वाला और न कोई घर में, तो सूर्य घर में आकर के मोहन चुपचाप मटकी के पास बैठ गए। अरे हाथी डाला चोरी है ना, चोरी, यो देखा यू देखा हाथ डाले यू आते ही तो देख ले। तो पहले चुपके से अरगा करके उसके उसके बगल में ठीक बगल में बैठ गए। फिर यू देखा यू देखा जब कोई नहीं दिखा तो माखन भरी कमोरी देखत ले ले लागे खान, चुते रहे मन खंड छाते सांसू करत सयान। हुआ क्या, बड़ी विचित्र बात है, बाल लीला है ना, देखा मटके में छाछ थोड़ी थी, छाछ ही लग के गई थी, मक्खन के लौंदे रख रख के गई थी, जितना खा है सारा खाने बड़ा अच्छा। तो निकाल निकाल के छुप कर देखेंगे मुंह में डालने, फिर यू देखेंगे उनको फिर मुंह में डालने, खाने लगे। अब देखा क्या हुआ, क्या विचित्र बात कि वो जो मणि का खंभा था उस खंभे से वो मटकी लगी रखी थी, उसमें रस्सी बांधी थी, मैया वो गोपी सुंदर की ले रही थी। तो ये जब खाने लगे देखा कोई नहीं कोई नहीं, चोर ने देखा कोई नहीं, इतने में क्या देखा कि मणि में खंभे में इनको दिखी अपनी छाया है। तो सोचा ये बालक कोई आ गया, दूसरा कोई बालक आ गया, चिते रहे मन खंभ छाते तासो करत सयान। बालक आ गया तो बुद्धि उपजाई, बोले इसने देख लिया, देख दे लिया इसने, और ये फिर पकड़वा देगा ठीक नहीं तो इसको रिश्तेदार बना लो, इसे इसके साथ हिस्सा करने। तो उससे बड़ी चतुराई की बात कहने लगे, बोले प्रथम आज मैं चोरी आयो भले बनो है संग, आप खात प्रतिबिंब खयावत जिरत कहत कारंग। बोले भैया कोई बात नहीं, मैं पहले चोरी करने आ जाया और तुम मिल गए, दो हो गए, अपने मजे में काम करेंगे, हिस्सा रहा आधा आधा, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे। यो कह करके खुद खाने लगे, थोड़ा सा अपने मुंह मिले, थोड़ा सा उसके मुंह मिले। तुमने जीतक वो देख तो दीख है, अब मणि के खंभे में मक्खन जाए कैसे, तो खंभे वो खंभे में से वो नीचे गिरने लगा मक्खन। जब नीचे गिरने लगा तो बोले देख भैया ये गिरा क्यों रहा है, कारंग क्या मंशा है तेरी, जो चाहो सब देव कमोरी, अति मीठो कतदारत, तुम्हें दे तुम्हें तो सुख पायो, तुम जी कहा बेचारत। डर है ना कहीं चोर को पकड़वा ना दे, और ले नहीं रहा है ना, तो शायद मन में सोचता होगा थोड़ा दिया है, हिस्सा कम मिला। तो बोले भैया कोई बात नहीं, सारी मटकी तुम ले लो, हैं पूरी मटकी तुम ले लो, बड़ा मीठा है, तुम जरा खा के तो देखो, गिरा क्यों रहे हो, बड़ा मीठा है। और भैया ये मत देखना कि तुमको मैं कुछ दे रहा हूं, उसे दुख पाक दे रहा हूं, तुम्हें देने में बड़ा सुख है, जो चाहो सब देव कमोरी, अति मीठो कदारत, तुम्हें दे तुम्हें तो सुख पायो, तुम ये कहा बेचारत। तीन बार थोड़ा है सारी कमोरी ले लो, तुम चखो तो सही, बड़ा मीठा है, और तुम इसलिए अगर मैं लेते हो कि भाई दुख पा के देता है, बोले ऐसी बात नहीं, तुम्हें दोनों में बड़ा सुख मुझे मिल रहा है, तुम जरूर ले लो, विचार मत करो। यूं करते करते ये बात कर रही तो वो जो बैठी थी उसको आदम हंसी है, सुन सुन बात श्याम के मुख की, उमगी हंसी बजनारी, सूरदास को निरख ग्वाली को तो भलचल मुरारी। ये श्याम सुंदर की मीठी मीठी बातें खंभे के बालक के साथ होती सुन करके, और उसको आगे हंसी जोर से हंस पड़ी, आनंद बड़ा आया, भोग लगी है, अपनी चीज जो भोग लगाने की थी वो अर्पित हो गई, भगवान ने स्वीकार कर ली, अब ये मीठी बातें सुनी तो आनंद बड़ा आया, तो हंसी रुकी नहीं, हंसी कर तो भागे घर वहां भाग गए। अब साथ अब एक नई बात हो, उस ग्वाली ने को इतना आनंद आया आज, जिसके घर में चोरी हो वो रोता है कि भूलता है, देखिए ना, उस गोपी के मन में इतना आनंद आया कि वो हर्ष के मारे फूल गई और जगह जगह फिरती फिरे, जैसे किसी कंगाल को अगणित धनराशि मिल जाए, किसी अपमानित को महान मान मिल जाए, किसी मरते हुए को अमृत मिल जाए, इस प्रकार से उसको इतना सुख हुआ कि वो अपने सुख को अंदर रख नहीं सके। अब वो उसका मन उमगा कि मेरे सुख को सब देख तो ले, तो निकल पड़ी घर से, जो मिले उसी के सामने हंसे और आनंद प्रकट करे। तो ग्वालियर ने पूछा, रे तेरे हो क्या गया, भूली फिरती ग्वालिनी मन में, पूछती सखी परस्पर बातें, पायो परो कछु कहूं तें, फूली भूली ग्वालिनी पन में फिर रही है। उसको इतनी आनंद में मतवाली देखकर सखियों ने पूछा, अरी सखी तुझे कहीं कुछ पड़ा धन मिल गया क्या, कहीं पड़ा धन मिल गया मुफ्त में। तो यूं सुनते ही उसके रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई, बोला नहीं गया, पुलकित रोम रोम गद गद मुख बानी कहत न आवे, पुलकित हो गई, रोम रोम पुलकित हो गया, कंठ गदगद हो गया, वाणी निकली नहीं। तो सखी ने कहा, बता दो सही ऐसा क्या हो गया, इतना आनंद में तू भर रही है, बता तो सही क्या मिल गया कहाँ मिल गया, ऐसो कहा ऐसो सखीरी हमको क्यों न सुना रहे, ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई हमको बताना है। तो तब भी नहीं बोली, तब बोली अरे सखी तुम हम तो दो नहीं है ना, ये शरीर तुम्हारे हमारे दो हैं, तुम्हारे हमारे प्राण तो एक हैं, तुम हम दोनों एक ही हैं, तन न्यारो जी एक हमारो हम तुम एक है रूप, सूरदास कहे ग्वाल सखिन सुन देखो रूप अनूप। सखी ने कहा कि तेरा मेरा तो केवल तन न्यारा है, जीव तो एक है, हम तुम दोनों एक हैं, फिर बताती क्यों नहीं क्या मिला। इतना ही मुंह से निकला कि सखी मैंने आज अनुपम रूप देख लिया, मैंने आज अनुपम रूप देख लिया है। तो कहा क्या देखा, तो फिर वो दोहरा के बताने लगी, आज सखी मनिखम्ब निकट हरी जय गोर सको गोरी निज प्रतिबिंब सिखावत जो सो प्रगति कर जन चोरी। सखी मैं आज सवेरे मणिखम्ब में रस्सी डाल करके मटके में और मैं गोरख बिलो रही, वहां ये श्याम सुंदर गए और बैठ गए और खम्बे में एक दूसरे बच्चे को देख करके उसको बालक मान करके और सिखलाने लगे प्रकट करे जिन चोरी भैया मेरी चोरी किसी से कह मत देना, अर्ध विभाग आज हमें हम तुम भली बनी है जोरी माखन खाऊ कतु डाल कहो छाल जो मत धोरी बात न ले सदे चाहे तो यही बात है थोरी। कहा कहने लगे भैया देखो मेरी चोरी के बाद किसी से कह मत देना, आजा आजा ले लो तुम्हारा हमारा हिस्सा रहा बराबर, जोड़ी मिर्गी तुम्हारी हमारी, अरे फेंक क्यों रहे मक्खन को क्यों क्या सोचते कमती है तो पूरा ले लो सारी मटकी तुम ले लो मीठो अधिक परम रुचि लागे तो भर दे कमोरी बड़ा मीठा है परम रुचि है सारी कमोरी तुम ले लो। तो सखी कहती है कि सखी जब मैंने ये दृश्य देखा जब मैंने श्याम सुंदर के मुख से ये वाणी सुनी तो प्रेम उमंगी धीरज न रहो तो प्रकट हंसी मुख मोरी सूरदास प्रभु सतत निरख मुख भजे कुंज की खोरी। जब मैंने ये दृश्य देखा मेरे मन में बड़ी उमंग आई धीरज रहा नहीं अपने आप को मैं रोक न सकी और जोर से हंस पड़ी और मुझे हंसते देख करके प्रभु संकोच में पड़ गए और तुरंत कुंज की तरफ भाग गए। ये हुआ अब बता मेरे आनंद का क्या ठिकाना, यूं कह करके और वो सखी फिर प्रेम में मूर्छित हो गई होगी। ये दशा अब घर घर की होने लगी। अब श्याम सुंदर ने क्या किया, अब मन में आया किसको बड़ा आनंद मिला है, देखिए ना भक्त वांछा कल्पतरु। श्याम सुंदर ने सोचा अपने मन में कि आज मैंने पहले पहले ये काम किया, इस प्रकार से मैंने चोरी के नाम से भोग लगाया और इस ग्वालिनी को कितना आनंद मिला, ये निहाल हो गई ना। तो ये आनंद अगर ब्रज की सदगोपियों में मिले तो मन हो गया प्रसन्न करी हरी माखन चोरी ग्वालिनी मन इच्छा कई पूर्ण आप भजे ब्रज खोरी। ग्वालिनी की इच्छा पूर्ण करके स्वयं भगवान ब्रज की गलियों में भाग गए। मन में यह विचार करत हरि ब्रज घर घर में जाऊं गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं। मन में आया श्याम सुंदर के कि भाई इसको बड़ा सुख मिला तो ये सुख औरों को क्यों न मिले, तो मैं ब्रज में घर घर जाऊं गोकुल में जो मैंने जन्म लिया इसीलिए लिया है ना इनको सुख दूं और इनके सुख को देख सुखी हूं इसी का नाम पे। तो मेरा मन करता सत्य घर जाकर माखन खाऊं बाल रूप जसुमति मोहि जाने गोपन मिल सुख भोग सूरदास प्रभु कहत प्रेम सुन ये मेरे बजर। यशोदा मैया तो मुझे डायरेक्ट समझती है क्या समझती है। और गोपियों के मन में दूसरी भावना भी है, तो गोपियों से मिलकर मैं उनके प्रेम रस का आस्वादन करूंगा। सुदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर ने मन में सोचा कि ये मेरे ब्रज लोग, जो ब्रजवासी तो मेरे ही हैं, इनको सुख देना चाहिए। इस प्रकार से बस जगह जगह काम रोज होने लगा। ब्रज घर घर पे बसी यह बात, ब्रज माखन चोरी करी लहरी, ग्वाल सखा संगठान। पहले अकेले गए, दूसरे दिन सखाओं को ले गए, अब तो छिंगों पर हाथ मारने लगे। फैल गई बात, ब्रज में घर घर में फैल गई बात। अब तो सबके मन में आज हमारे घर आवे, आज हमारे घर आवे, कल उनका आज हमारे घर आवे, हमारे यहाँ भोग लगावे। ब्रज घर घर प्रगति यह बात, ब्रज माखन चोरी करी ले हरी, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज बनिता यह सुनी मन हरकित, सदन हमारे आवे माखन खात। अचानक पावे ब्रज हरी उरही छुआवे, मन ही मन अभिलाष करत सब, हृदय धरती ये ध्यान, सूरदास प्रभु को घर पे ले दही माखन खान। वाह, ब्रज के घर घर में ये बात फैल गई कि श्याम सुंदर और दही और मक्खन चोरी करके खाते और गोप सखाओं को खिलाते हैं। तो ब्रज की गोपियां सुन करके सब के सब हर्ष में भर गईं, बोले तब तो हमारे भी आने। सोचने लगी कि मोहन हमारे घर कब आए आए और उन्हें मक्खन खाते देख करके अचानक प्राप्त कर लें और प्राप्त करके हृदय से लगा लें। सब मन ही मन में अभिलाषा करने लगी, सब हृदय में उनका ध्यान करने लगी। सूरदास जी कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर भी आए, मक्खन तुम अपने घर से उनको खाने को दो, तुम्हारे घर भी आएंगे। चली ब्रज घर घर यह बात, चली ब्रज घर घर यह बात, नंद सुत संग सखानी ने चोरी माखन खात। चली ब्रज घर घर यह बात, को कहती मेरे भवन को कहती मेरे भवन भीतर अवहीं बैठे भाई, को कहती मुई देख द्वारे उत ही गले पर आज। चली ब्रज घर घर यह बात, को कहती कि भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन देवा थे खाए जितनो शाम। चली ब्रज घर घर यह बात, को कहती मैं देखी पाऊ भरी धरू अखबार, को कहती मैं बांध राखू को सके निर्वार। चली ब्रज घर घर यह बात, सूर्य प्रभु के मिलन कारण करत बुद्धि विचार, जोर कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। चली ब्रज घर घर। अब जब ये बात फैली तो अब ब्रज के घर घर में कोई चर्चा रही नहीं गई दूसरी, गृहस्थों का घर और सबके सब घरों में गोपियां, कोई गई बिना गोपी के नहीं। तो प्रत्येक घर में केवल एक चर्चा रहेगी और कोई चर्चा नहीं। तो क्या चर्चा फैली, लोगों ने कह दिया सुन लिया और बात फैल गई कि भाई नंदलाल जो है नंद नंदन के सखाओं के लिए और रोज चोर चोर के माखन खाते, कोई अपना अनुभव सुनाने लगी और कोई अपना मनोर सुनाने लगी। कौन कहती मेरे भवन भीतर अभी पैठेगा ये चर्चा, कोई वो भी बोली कि मेरे घर में तो अभी घुस के गए हैं, अभी अभी आए थे और अभी अभी माखन खा के गए। कोई बोली कि अरे तेरे घर तो खा गए पर मैं भूल से दरवाजे पर खड़ी रह गई थी, मुझे देख करके भाग गए। कोई कहती है कि तुझे देख कर तो भाग गए पर मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कैसे हुए आ जाएं। कौ कहती कई भांति हरि को देखूं अपने धाम, कैसे ही वो मेरे घर में आ जाएं, उनको मैं अपने घर में देखूं। और बढ़िया से बढ़िया माखन जितना वो चाहें उतना उन्हें खिलाऊं। हेरी माखन देहूं आछो खाओ जितना शान। किसी ने कहा कि एक बार आछो जाए मेरे घर में फिर तुम्हें भुजाओं से पकड़ लूंगी, जाने दूंगी जाने दू। वो कह कि मैं देख पाऊं बड़ी भरूं अखबार। और कोई बोली अरे तुम तो खाली हाथों से बांधोगी, मेरे घर आने अगर कोई तो मैं सचमुच बांध रखू उनको तो कुछ उड़ा ना सके। को कह कि मैं बांध राखू हो सके मेरे आए, किसकी ताकत है कि मेरे बांधे हुए को छुड़ा ले कोई मेरे घर में एक बार आ तो जा बांध रखूंगी छुड़ा नहीं सकेगा। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी से मिलने के लिए इस प्रकार अपनी अपनी बुद्धि से सब विचार करती सोचती कैसे मिले, और दोनों हाथ जोड़कर विधाता से प्रार्थना करती है हे भगवान नंद नंदन हमारे पति हूं पुरुष नंद कुमार। अब साथ इस प्रकार से रोज रोज ये बड़े बहुत पद है, रोज रोज मक्खन की लीला चलने लगी। तो अब जब बात आगे बढ़ी तो इन्हें लोग इन्हें छेड़ने लगे, छेड़ने लगी तो छेड़ने लगी तो ये भी उत्पात करने लगे। और अभी छेड़ना उत्पात कराना सब चाहती थी, इसलिए किसी के मन में आया कि ये हमारे बर्तन जब फोड़ जाए ना, हमारे बर्तन फोड़ने तो एक अवसर मिले हमको कि फिर उलाना देने के लिए हम जाएं यशोदा मैया को हूं तो वहां देखने को मिल जाए, और वहां फिर उनको देखें खड़ी खड़ी कुछ देर तक, और वहां देखे कैसा मुंह बनाते फिर माँ के सामने ये आनंद आवे। फिर ये कहीं बर्तन फोड़े तब ना, तो क्या हुआ एक दिन इनके मन में भक्त के मन में आए, इन्होंने मान लिया कि घर घर यही सही तो फोड़ दिया बच्चन, फोड़ फाड़ दी। उसकी स्कीम पहले होती यशोदा मैया के पास गई, जाकर के उदाहरण देती हुई बोली यशोदा कहलों की जो काम दिन प्रति कैसे सही पड़त है दूध दही की हानि, यशोदा कहलों की जो काम। गोपी बोली गुस्से नकली गुस्से में यशोदा जी कहां पर संकोच करें, सहते सहते हार गई, रोज रोज दूध दही की हानि हम ग्वाल में सहें कैसे। बोले क्या किया, बोले क्या क्या किया तुम छात्र हो तुमको तुमको मालूम हो, आगे देखो अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आन गोर सखाई खयाओ खवाओ लड़कनी अरे भाजो भाजो न भानी, चल के देखो तो स्वयं खाया सारे बच्चों को खिला दिया बांट करके, और फिर रहा सा सारे बच्चनों को फेरी आया है। तो और बोले मैंने इतना चतुर है गोपी से यशोदा बोली कि छिपा देखना था, फिर इतना डर था कि छिपा के क्यों रखा। गोपी बोली अच्छा था छिपा लीजिए, मैं अपने मंदिर के कोने राखे माखन छान सोई जाए प्यारो ढोटा लीनु है पहचान यशोदा एक हलों की जो कान। छिपा के रखा था न पता लगे तो तेरा बेटा ये कोई मामूली है क्या, कोरू में रखे हुए को जाकर ढूंढ लिया और वहीं उसको फोड़ डाला। बूझ ग्वाल गृह में आयो मैं कुल शंका मान सूर श्याम ने उतर बनायो चींटी कारत पान यशोदा कहलो की। तो बोले तुमने फिर उसका हाथ पास पकड़ा नहीं, क्या किया तुमने। बोले जब हाथ पकड़ा तो कहा छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ी की। तो मैंने कहा तो हाथ में जो लगा है मक्खन और ये होठ पर लगा, ये क्या चीज है? तो क्या कहता है कि तेरी कमोरी में चींटी लगी थी, उसे लगा निकालने तो हाथ पे लग गया। तो बोले होठ के कहां से लग गया? अरे मैंने होठ पर खा जा तुझे, तो खाद करने लगा तो होठ के लग गया। महाराज को ये न समझे कि भगवान योगन यो वो योग योगेश्वर भगवान सच्चिदानंद भगवान ये चोरी भी करें झूठ भी बोले, समझे? ये जहाँ है वहाँ भगवान दूसरे हैं, ये तो ब्रजवासियों के भगवान हैं जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते हैं। तो ये शंका की बात नहीं है, भगवान न चोरी करते हैं न भगवान झूठ बोलते हैं, भगवान में सब कुछ है ही नहीं। तो अब बोले माँ ने समझाया कि बेटा ये सब क्यों करते हो, अब समाप्त करना है। माँ ने समझाया कि बेटा क्यों करते हो तुम, माँ खन खात पर आए घर को नित्य प्रति सहस न खानी लथिए लोग शब्द बदमात घमर को। माता ने कहा बेटा तुम दूसरे घर में मक्खन क्यों खाने जाते हो, तुम्हारे घर में हजारों मछलियां रोज मछी जाती हैं और दही मत के मटकों से जो घरघराहट की आवाज होती है ऐसे मालूम होता है मानो दादे गड़ रहे हैं, इतनी आवाज होती है, है? हजारों हजारों आदमी तुम्हारे घर में रह करके और ये अपना पेट पालते हैं, दही मत कर वे मच्छे को बेचते हैं, नौना गांव तुम्हारे घर में है, नवल का भोग दुए नित्य प्रति बड़े नाम है नंद महर को, नौला गायें तुम्हारे घर में दूसती हैं, नंद बाबा का बड़ा नाम है, ताके पूत कहावत हो तुम उसके बेटे कहते हो और फिर भी तुम चोरी करते हो, तो ये भाई ये चोरी करके छप्पर उजाड़ना, ये अपनी कंगाली प्रकट करना, चोरी कर घर में तुम जाए चोरी करता है तो सूर्य शाम कितने तुम खाई हो, बजे माखन मेरे जय त्या घर को कितना जमी माखन खाओगे, ये तो तुम कितना खाओ दूसरे में मेरी जगह भूल जाता है दशा नहीं लगता है। तो बोली बोले भैया मैंने खाया भैया नहीं, ये सब ऐसे ही और मेरे ऊपर तो ये भैया मैंने माखन खाया भैया नहीं मैंने, तो मेरे चाह खाया नहीं तो फिर बात क्या है, क्यों ये सब ऐसा करती है? तो बोले बात बड़े पते की कही, बोले मैया यही कहती जुवती सब चोर, यही कहती जुवती सब चोर, खेलत कहीं रहे मैं बाहर चिते रहती सब मेरी ओर। भाई मैया तुम्हें सच्ची बात बताऊं क्या, मैं तो इनके मारे हैरान हो गया, ये मुझको तो चोर बताती हैं, तो सुनाओ उनके एक्शन तुमको। मैया से बड़ी सरलता से बोले, बोले देख मैं कहीं भी खेलू इनकी तो आंखें मेरे में गड़ी रहती हैं, हैं? बोला ये कोई बात है, चिते रंग सब मेरी ओर, एक नहीं ये सैकड़ों सैकड़ों कथी हो जाती हैं और केवल मेरी ओर देखते रहती है, भला बता मुझे सताना है कि नहीं, और फिर क्या करती है बोल लिए भीतर घर अपने, बल्ला हमारे घर चल, बल्ला हमारे घर पर हमारे घर चल, परेशान हो जाता हूं तो घर जाना पड़ता है, तो घर में उसको बुला लेती हूं मैं छोटा सा बच्चा, बुला के क्या करती है बड़े प्रेम से स्नेह से मेरा मुंह चूमने लगती है, मुझे गोद में ले लेती है, बोल लिए भीतर घर अपने मुख चूमत भर लेती है कोर और माखन हिर देती अपने कर और फिर मुझे भली प्रकार देख देख कर अपने हाथों से मक्खन देती खिलाती हैं और खिलाते हुए मैया मुझे पता नहीं कि विधाता से मांग क्या क्या मांगती रहती, कुछ और मांगती रहती है मुझे खिलाते हुए भी ये। और मैया मैं नहीं जाता तो पुकारती है, तभी नहीं जाता तो तेरी दुहाई देती है मैया कि तुम कुछ सोचा मैया कि सोचा नहीं आना, तब मैया मैं चला जाता हूं सूरदास जी बोले कि मैया ने सुन करके कहा कि ठीक बात, गले लगा लिया उसको। श्याम सूर श्याम हंसकंठ लगायो वे तरुणी कहां बालक मोर। यशोदा मैया ने हंसकंठ लगा लिया और बोली कहां से वो जवान लड़कियां और क्या जो मुन्ना सा बच्चा, सब झूठ बोलते। अब समझाने लगी मैया बोली जसुमती कहती कान मेरे प्यारे अपने ही आंगन तुम खेलो। जसुमती कहती कान तुम प्यारे अपने ही आंगन तुम खेलो। बोल ले सब सखा संग के मेरे कहो कबहू जन पेलो। जसुमती कहती कान मेरे प्यारे अपने ही आंगन तुम खेलो। बजपनिता सब चोर कहती तो ही लाजन सकुचे हे जात मुख मेरो। आज मोही बलराम कहत है झूठ ही नाम धरत है तेरे। जसुमती कहती कान मेरे वारे अपने ही आंगन तुम खेलो। जब मुही रिसला जति तब त्रासती बांधति नारथी जैसे चेरो। सूर हसती बाण बेतारी चोर नाम कैसे हो सुत फेरो। माँ गले लगा करके श्याम सुंदर को वासल रस से भर गए, हृदय उमड़ आया, आंखों में आंसू भर गए। गोद में बैठा करके मैया सिर पर हार फेरने लगी, पुचकार के रोती हुई बोली बेटा प्यारे तुम मेरी बात मारो, बोला क्यों तुम जाते हो कहीं अपने आंगन में खेलो ना, बड़ा आंगन है और सारे मित्रों को ही बुला लिया करो, कोई अपने यहां कमी तो रही मेरी बात तुम मन ही खेला करो। बेटा देखो जब ये बज बनिता तुमको चोर कहती है उस समय लाज से सकुच से मेरा मुंह नीचा हो जाता है। मैं जानती हूं तुम चोरी नहीं करते, मुझसे बलराम कह गया आज मेरी बलराम कहत, बलराम ही मुझसे कह दिया कि मैया झूठी नाम में बुरा नाम लगाती है, ये चोरी वोरी करता नहीं तो तुम बेटा करते रहिए मैं जानती हूं। पर जब आकर के मुझसे कहती ला देती है तब मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं तुम्हें डांट देती हूं, कभी कभी मार देती हूं जैसे कोई गुलाम को मारता है। और ये ग्वालिनिया जो है ये उस समय ताली बजा के हंसती। तो बेटा एक एक बात मेरी सुनो, तुम आज से ऐसा काम करो कि तुम्हारा चोर नाम न रहे, चोर नाम पलट जाए बेटा, ये तुम करो। तो ये बोले मैया मैं चोरी करता कहा हूं, मैं तो करता होता हूं नहीं चोरी, ये तो मैया झूठे झूठे और मेरा नाम वाम लगा देते हैं, मैया मैंने मक्खन खाया हुआ है नहीं। मैया मैंने भी मक्खन खाए ख्याल पर ये सखा सद मिली मेरे मुख लपटायो। मैया हे मैंने भी मक्खन खाए देख तू ही छीके पर भाजन उनसे धर लटकायो। हो जू कहती नान्हे कर यतने मैं कैसे कर पायो। मैया हे मैं नहीं माखन खायो मुख दधि पूछी बुद्धि एक कीनी दोना पीठ दुरायो। दारू शांति जस सुकाई जसोदा श्यामई कंठ लगायो। मैया हे मैं नहीं माखन गायो मक्खन का दोना लिए थे हाथ में दोनों हाथ में लिए थे और माँ से कहने लगे उन्होंने खाया नहीं, दोनों यूं कर लिए हाथ में किए होंगे तो बोले मैया मैंने माखन खाए, मैया मैंने माखन खाया। मुझे याद है, याद आता है ये सारे मेरे सखा है ना, ये सब मेरी जिंदगी कराना चाहते हैं, इन्होंने मेरे मुख पर लिख दिया। और तू ही देख कितना ऊंचा बत्तू रहता छींके पर, ये मेरे नन्हे नन्हे हाथ वहां तक पहुंचते हैं क्या बता तू, देख मेरे हाथ हाथ नाथ में मेरे मेरे हाथ पहुंचते हैं यहां तक। तो मैया जरा सुनने में जरा तल्लीन हुई, जिन्होंने जरा सा मुंह मुंह पोंछ लिया और पोंछ करके मक्खन का दोना और पीछे कर लिया कि गई मैया देख न ली। मैया पसंद हो गई, बाल विनोद मोद मन मोहो भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमति को यह सुख शिव ग्रंज नहीं पायो। यशोदा मैया ने अपने श्याम सुंदर के बाल विनोद को देख करके अत्यंत आनंद प्राप्त किया, वो आनंद उन्हें प्राप्त हुआ जो शंकर जी को नहीं मिला, ब्रह्मा जी को नहीं मिला। ये माखन चोरी लीला, तो ये बात फिर ध्यान में रख लीजिए, ये कभी किसी को मन में नहीं लाना चाहिए कि भगवान ने माखन की चोरी की तो हम और चोरी क्यों न करें, चोरी तो की है माखन की चोरी की हम और चोरी करें। दूसरी बात ये भी नहीं ध्यान में लाना चाहिए, कोई लाने में उस पर हमारा जोर नहीं है कि ये भगवान ने ये काम क्यों किया। तो ये ब्रज के भगवान जो हैं ये प्रेमी हैं। गोपी के मन में आया कि हमारे यहाँ नैवेद्य भोग भगवान इस प्रकार लगाने, नई पद्धति के हम मक्खन रखें उन्हीं के लिए और रखें से ऐसे कि वो उनको नैवेद्य तो पहले अपन को घर में रखें उनके लिए, बुलाएं उनके लिए, मटकी में रखें उनके लिए, सजा के रखें और सारा सामान तैयार करके रखें कि जिसको चोर को चोरी करने में पैर चलने पड़े। वहां पास में एक उखल भी रख दें और हाड़ी में छेद करने के लिए एक नुकीली लकड़ी भी रख दें जिसमें सब सुविधा मिल जाए, सब तैयारी, पर भोग लगावें वो कैसे, हम मन ही मन बुलावे, हम छिप के खड़ी हो जाएं, वो आने आकर के धीरे से मक्खन को लेकर के स्वयं खाएं और अपने साथियों को खिलाएं और कहीं बंदर को भी लुटा दें। और हम बड़े मजे में देखें और देख कर सुख लेती रहें, जब भागे जब जाए लगे तो जैसा पकड़ लें परसों हो जाए, बड़ा आनंद मिले। तो ये नैवेद्य का नया तरीका है, ये चोरी वोरी नहीं। सिद्धांत दृष्टि से जब सब चीजें भगवान की हैं, सब कुछ भगवान का है, तो अपनी वस्तु की चोरी नहीं हो सकती, अपने उसके स्वामी हैं, चाहे सो करें। जो ऐसा नहीं मानते उनके लिए भैया सीधी बात यह है कि उस समय 5 वर्ष के बच्चे थे, 5 वर्ष के बच्चों का खेल था, इसको खेल मान लो। और दोष ही देखना हो तो अपने पास कोई उपाय नहीं है, दोष देखो कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये इतनी मधुर लीला है, ये भगवान का जो बहुत बड़े पवित्र ऊंचे ऊंचे कर्म करना, सारे संसार को अपने संकल्प पर विद्युत रखना, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के संकल्प में विद्युत हैं, खड़े हैं सब अनंत कोटि ब्रह्मांड, उन भगवान से यशोदा मैया के कहने पर पीड़ा नहीं उठता। उठा लिया गोवर्धन, कौन बड़ी बात थी उसमें, जिनके संकल्प से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड उठे हुए हैं उन्होंने अगर पाई फायदे पर मेरी बात की, बड़ी बात इसमें हुई कि पीड़ा न उठे, पीड़ा न उठे ये बड़ी बात हुई, गोवर्धन कौन बड़ी बात है। ये सारे सारे ब्रह्मांड में जो एक रस व्याप्त हैं, जिनके सिवा कोई वस्तु नहीं, जो अनवच्छिन्न है निरवच्छिन्न है, न तो जिनके बाहर न भीतर स्वयं वही वो है, वो अगर इस रूप में है कौन बड़ी बात है, तो उसको उनको अगर मैया रस्सी से बांध ले, इसमें स्वारस्य है। वो तो उनका स्वरूप है ही, उसमें क्या स्वारस्य है। सारे जगत में अपने को देखने वाले, सारे मोह धर्म से सर्वथा रहित, वे खंभे में बच्चे को देख करके दूसरा बच्चा मान के मोहित होने की लीला करें, इसी में स्वारस्य। तो ये जो बाल लीला भगवान की है, ये रस भरी है, मोद भरी है, आनंद भरी है, और है ये परम पवित्र, परम पावनी। इसे सुनकर, इसका मनन करके पवित्र हृदय से ध्यान करना चाहिए। शंका समाधान की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस आनंद की वस्तु है। आनंद का, ये आनंद का, सुधा आनंद का मधुर प्रवाह है, इसमें अवधान कीजिए और आनंद लाभ कीजिए। हरिओम तत्सत, वो विषय रह गया, संत महिमा की चीज रह गई, वो फिर कभी बात अश्नान प्रेत आत्मना। ये भगवान ने कहा, ये श्लोक सुदामा के उसमें आया है, सुदामा के आख्यान में ये श्लोक आया है। और वो मुट्ठी भर के खा लिया भगवान ने, चोरों को खा लिया। तो ऐसे भोग में क्या होता है, तो वहां धन्ना कभी बात ही नहीं, वो तो खाएगा। तो भगवान ने खा लिया, अब रोज भोग लगाए, रोज खा लिया अपने उदय, बोले देख इतनी तेरे बदमाशी क्यों की, तीन दिन तक खुद भूख मरा, मुझको भूखों मारा, तीन दिन बीत गए, तेरे प्राण सूखे होंगे, मेरे तो सूखे गए, भूखों मरते मरते, खुद भूखों मरा, मुझे भूखों मारा। ये भी कोई अच्छे आदमी भरे आदमी के बाद पहले दिन खा लिया होता इतने। भगवान हंसने लगे, अब रोज खाने लगे। बाबा आए, बाबा आए उनके धन्ना के बाबा, तो कहा बुरा ठीक की किराने की यहाँ ठीक की, तो सब ठीक ठाक रहा ना, भोग लगाया। बोले भोग क्या लगाया, ये है बड़ा शरारती तुम्हारा ठाकुर। बोले कैसे, कहा तीन दिन तक इसमें भूखों मारा, दो दिन तो रोटी फेंकनी पड़ी, और तीसरे दिन जब मैंने धमकाया या तो छड़ी लाओ या फिर रोटी बनाऊंगा नहीं, तब चुपके से आकर के बात मान ली, खाने लगा। धन्ना के दादा ने देखा कि लड़का कुछ पागल हो गया मालूम होता है, लड़का पागल हो गया, ये कैसे है, ये बेमतलब की बातें करता है, क्या छड़ी दिखाई और क्या कहा, क्या खाने लगा, इतने दिन हो गए, मेरे कैसी बात करता है, मेरे कैसी क्या करूँ, तीन दिन तक तो बड़ा हैरान किया इसे। बोले अब क्या खाता है, रोज खाता है, मेरे साथ खाता है, जुगाल छिड़ा। हाँ बोले अभी लो बना के लाया रोटी। बोले खा ले, आज बोले नहीं। तो बोले क्यों, बाबा के सामने मेरे जी चुने जाता, तू रोज तो खाता है, आज भी खाने को आता है, आज जल्दी से। तो कहा तेरा बाबा ऐसा मानता नहीं, बोले मान लेगा तेरे आने से। तो भगवान आ गए, भगवान आ गए, मजे में दोनों ने खाया। तो ये धन्ना, धन्ना कहीं बड़ा होता, पढ़ा लिखा ज्यादा होता, दार्शनिक पंडित होता, तो उसके समझ में ये बात आती नहीं कि भगवान भी बच्चे बन के कहीं खा सकते हैं। वो समझता वो युक्तियों से, तर्क से, न्याय से, सब तरह से लगाता कि कौन सी युक्ति संगत है, इसमें कौन कौन प्रमाण है, हैं कौन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपका प्रमाण है, कि कौन सा प्रमाण अनुमान प्रमाण है, कैसे सिद्ध किया जाए, क्यों कर माना जाए, इसकी कैसे सिद्धि होगी। सर वहाँ सिद्धि बुद्धि कुछ नहीं, वहाँ तो खा ले तो सिद्धि, न खा ले तो असिद्धि, सीधी सी बात। तो बच्चों में बच्चे बन के कौन खेलते हैं, अब भी कौन खेलते हैं, ये बच्चों में जो ये बच्चे बने हुए हैं सरलता से खेलते हैं, ये कौन है, बूढ़े बने हुए कौन है, महात्मा बने हुए कौन है, ये तो हम अपने आप अपना अज्ञान प्रकट करते हैं कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा कौन कर रहा है आज, अज्ञानी कौन बन रहा है, अज्ञानी बनकर जो अज्ञान की लीला कर रहा है आज, ये कौन, ईसाइयों का शैतान आ गया। ईसाइयों के दो चीज हैं, एक 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 भगवान एक शैतान है, दो की सत्ता है। हमारे यहाँ शैतान भी भगवान ही बन जाता है, अलग सत्ता नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसा मत्तेन विद्धि नत्वं तेषु ते मयि। महाकाल बन के जो सारे जगत को खाता है वो कौन है, नहीं समझ में आ गया, श्री कृष्ण के शब्द देख लो, कालोस्मि लोकक्षेत्र प्रवृद्ध लोकान समाहर्त में यह प्रवृत्त है, मैं काल हूँ काल और सबको खा जाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। ये भगवान तो सबको खा जाने वाला भगवान, सबको प्रकट करने वाला भगवान, सबका पालन करने वाला भगवान, तो बच्चों के साथ खेलने वाला भी भगवान, बच्चों के सामने विश्वास से प्रकट होकर धन्ना की रोटी खाने वाला भी भगवान, प्रहलाद को गोद में लेने वाला भी भगवान, ध्रुव की पांच वर्ष के वसन दर्शन देने वाला भी भगवान, ये सारे तो विश्वास पूर्वक अपने जीवन में किसी एक चीज को उतार ले। भगवान के प्रत्यक्ष होने में विलंब नहीं है महाराज, निष्ठा पूर्वक भगवान को पुकारने में और चाह करने में विलंब है। जिस भाव से जिसको भगवान की चाह हो उसी भाव से सच्चे हृदय से निष्ठावान होकर एक होकर एक का होकर एक के लिए भगवान को पुकारे, फिर भगवान न कभी दूर थे न कभी दूर हैं न दूर हो सकते। दूर उनके लिए जो बहुत दूर मानते हैं, दुर्लभ उनके लिए जो बहुत दुर्लभ मानते हैं, जो कहते हैं यही हमारे साथ खेलता है। ब्रज के बच्चों का भी बैम हुआ ही नहीं, जाने लगे अगासुर के पेट में, अजगर के पेट में। किसी ने कहा अगर अजगर हुआ तो तुम तो कहते हो कि ये अजगर नहीं है, अजगर सरीखी है, बन की शोभा है, बन का रूपक है, पर कहीं अजगर हुआ तो दूसरे ने कहा कि डर क्या, कन्हैया तो साथ है। कन्हैया तो साथ है, डर क्या है। तो बस कितना विश्वास कन्हैया का, आग लगी अरे कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया आग को खा जाएगा, कन्हैया आग को खा गया, और आग खा जाएगी कोई बचाने वाला नहीं, तो आग खाई जाती है, आग खा जाती है, मौत मार नहीं सकती उसको। कोई कहे कि मौत तुम मत मारो, पर मौत मार नहीं सकती उसको जो मौत में भगवान को देख लेता है। प्रहलाद का इतिहास इसका साक्षी है, प्रहलाद का इतिहास साक्षी है। प्रहलाद के सामने मौत आई, कई बार मौत आई, मौत को हिरण्यकश्यपु ने नाना रूपों में प्रहलाद के सामने भेजा, पर प्रहलाद को मौत मार नहीं सकी, मौत मार नहीं सकी। क्यों नहीं मार सकी कि मौत में मौत पना जिसका दिया हुआ है वो जब रक्षक हो जाता है, अग्नि में अग्नि पना जिसका दिया हुआ है वो जब निकाले उसमें से, ये लोग निषद की कथा सब जानते होंगे, अग्नि का अग्नि पना नहीं रहा, वायु का वायु पना नहीं रहा, एक तिल को न उड़ा सके न जला सके, बात तो उनकी थी भगवान की। तो इसलिए एक निष्ठ होकर अपने जीवन में उस वस्तु को उतार कर जीवन वैसा बना दें, ज्ञानी बने, भक्त बने, कर्मी बने, निष्काम कर्मी बने, जिसको जो अच्छा लगे सो बने, पर भगवान के लिए बने, और जो बने उसी में पातिव्रत धर्म का पालन करें। बस एक ही यह है, दूसरा अच्छा इससे हो तो हमें मतलब नहीं, हमारा तो यही है, हमारा तो यही। इसी प्रकार निष्ठा रहे और साथ साथ उस निष्ठा में श्रद्धा रहे, मन में जो बात बात में अपने मन की चाहता है ना, वो साधक नहीं बन सकता। साधक तो अपने मन को खोने वाला होता है, साधक तो अपने मन को खोकर साधन के मन की बात करने वाला होता है। साधन जो कहे अर्थात उसका भगवान जो चाहे वही उसका मन है, अपना मन कहीं बीच में आए साधन नहीं हो सकती। जो साहब तरफ जी उठने आगे, हमारा मन तो पांच जी उठने का है, पांच जी उठेंगे तो नहीं साधना होगी। जो कुछ वहां से आज्ञा हो गई, इशारा हो गया, संकेत मिल गया, बस वो जीवन है। इसलिए साधक को निमानुवर्तिता के साथ अपने जीवन में सदाचार का, अपने जीवन में सत्य का, जो बात सुने जो कहे उसे जीवन में उतार ले, चाहे वो कोई सी बात हो, सत्य बात हो, तो भगवान तक पहुंचा देगी, भगवान तक ना जाए खाली हो।
पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है माखन चोरी लीला का रहस्य, इसका कैसेट संख्या है 154। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्ग आश्रम में 20 जून 1958 को दिया था।